अध्याय जैसे कोई जख्म जलाता हो। क्लब के बाहर रात कुछ ज्यादा ही चुप थी। भीतर का शोर अब भी दीवारों में गूंज रहा था, लेकिन बाहर सब कुछ थमा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क की लाइट से गिरती परछाइयां जैसे एक अधूरी कहानी की झलक दे रही थीं। रैना दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी सांसें अब भी अनियंत्रित थीं। अभी कुछ मिनट पहले ही जिस तरह से सब कुछ हुआ, वो थप्पड़, वो चीख, वो अपमान, सब उसकी त्वचा में चुभता जा रहा था। तभी रैना, वो आवाज बिजली की तरह गूंजी। रैना पलटी और देखा अखिल तेज कदमों से उसकी ओर आ रहा था। मैंने कहा था क्लब से बाहर निकलो, उसका स्वर अब भी आदेशात्मक था। मैं निकल रही थी, रैना बोली, आवाज में थरथराहट थी। अपने आप? अखिल ठठाकर हंसा। तुम्हारी औकात है इतनी कि तुम अपने फैसले खुद ले सको? कृपया, रैना ने धीमे से कहा, मुझे जाने दो। लेकिन अखिल ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने रैना की कलाई पकड़ ली, कसकर, जैसे कोई गुलाम को बांधता है। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ बातें करना जानते हैं, सही वक्त पर पीछे हटना नहीं। आज नहीं, आज मैं खुद ले जाऊंगा तुम्हें वहां से जहां तुम छुपती फिरती हो। छोड़ो मुझे अखिल। बहुत छोड़ दिया, अब नहीं। उसने रैना को खींचते हुए अपनी कार की ओर ले जाना शुरू किया। रैना संघर्ष करती रही, उसका हाथ छुटाने की कोशिश, पर अखिल का पकड़ना जिद्दी था। रात की गहराई में दो परछाइयां आपस में टकरा रही थीं, एक तानाशाह, एक थकी हुई जंग। कार का दरवाजा खोला गया। बैठो, अखिल ने कहा। नहीं बैठूंगी, रैना चिल्लाई। तो जबरदस्ती बैठा दूंगा, अखिल बोला, और उसने सच में ऐसा ही किया। रैना को उसने बाह से खींचा और सीट पर धकेल दिया। दरवाजा जोर से बंद किया गया। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर ड्राइवर सीट पर आकर अखिल बैठा। इग्निशन ऑन हुआ, कार धीरे धीरे आगे बढ़ी और शहर की खाली अंधेरी सड़कों पर उतर गई। कार के भीतर का मौन अब कांटों की तरह चुभता था। रैना एक कोने में सिमटी हुई थी, अपनी बाहें खुद के सीने के पास लपेटे, चेहरा दूसरी तरफ किए हुए। लेकिन अखिल, उसकी आंखें सड़क पर थीं, पर शब्दों की धार उसके होठों से निकल चुकी थी। तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? उसकी आवाज में ठंडक नहीं थी, वो ठंडी आग थी। क्लब में खुद को बेचने जाती हो और फिर मासूम बनकर मुझे दोष देती हो? रैना चुप रही। तुम्हारे जैसे लोग रिश्तों की भाषा नहीं जानते, बस पैसे की बोली लगाना जानते हैं। रैना की आंखें नम हो चुकी थीं। मैंने तुम्हें एक बार अपनाया था और तुमने बदले में क्या किया? मुझे मजबूर किया, रैना ने धीरे से कहा। मजबूर? अखिल हंसा, एक बेरहम हंसी। अगर मजबूरी का मतलब शॉर्ट ड्रेस पहनकर अमीर मर्दों की आंखों में झांकना है, तो फिर हजारों लड़कियां मजबूर होंगी रैना। मैं कोई सफाई नहीं दे रही, रैना बोली। पर तुम हर बार क्यों लौट आते हो? क्यों हर बार मुझे मेरी औकात याद दिलाते हो? अखिल का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। क्योंकि मैं भूलना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें देखकर कुछ याद रह जाता है। क्या? रैना की आंखें अब उसके चेहरे पर थीं। ये कि तुमने मेरा नाम खराब किया और तुमने उस नाम को कीचड़ में घसीट दिया। रैना की आंखों से एक आंसू खिसक गया। तुम्हें लगता है मुझे अच्छा लगता है ये करना? क्लब में काम करना, लोगों की आंखों में बिकती नजरों से देखना? तो फिर छोड़ क्यों नहीं देती ये सब? अखिल गुस्से से बोला। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, रैना चीख पड़ी। मेरे पापा बीमार हैं, हर दिन इलाज के लिए पैसों की जरूरत होती है। और उसके लिए तुम खुद को नीलाम करती हो? हाँ, उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि किसी और ने मेरी दुनिया को कब का तबाह कर दिया था। अखिल चुप हो गया। कुछ देर तक कार की साइलेंस सिर्फ टायरों की घर्रर में घुली रही। फिर धीरे से उसने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता रैना। मैं जानती हूं, रैना ने कहा, और मैं भी तुमसे नफरत करती हूं। लेकिन एक अजीब सी चुप्पी फिर पसर गई, ऐसी जो सिर्फ नफरत के बाद बचती है, और उसमें कहीं एक अजीब सा आकर्षण भी सांस ले रहा था। दोनों ने खिड़की से बाहर देखना शुरू किया। शहर अब पीछे छूटता जा रहा था और कार कहीं अंधेरे में उतरती जा रही थी।